ओम अज्ञानाति विरांधस्य ज्ञानांजला शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आज एक विशेष दिन है जो कि आज आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर के तिरोभाव तिथि है। नरोत्तम दास आज एक भजन गा रहे थे जो कि वैष्णव की आचार्य के विरह जनित ये जो गीत गा रहे थे इसको भी नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखे थे। श्रीनिवास आचार्य की तिरोभाव के अवसर पर इन्होंने अपने विरह दुख को व्यक्त किए थे। पाषाणे कुटीब माथा अनले पशिब गौरांग गुणेर निधि कुथाई गेले पाब। मैं पत्थर में सिर को फोड़ डालूंगा, चट्टान पर सिर को फोड़ डालूंगा, बाग में प्रवेश कर जाऊंगा, लेकिन वैष्णव के विच्छेद दुख को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इसी बात को भी चैतन्य महाप्रभु ने जो रामानंद राय के साथ वार्तालाप करते थे उन्होंने पूछा, दुख मध्ये कौन दुख हए गुरु तरा। जितनी प्रकार के दुख है संसार में सबसे श्रेष्ठ दुख है, सबसे जो भारी दुख क्या है, तभी रामानंद राय ने कहे, वैष्णव विच्छेद दुख बिना दुख नाही आर। जब किसी महान आचार्यों को वैष्णव आचार्यों को हम खो देते हैं, जो उन्होंने नित्य लड़ में प्रवेश कर जाते हैं, उनकी संग प्राप्त न करने के कारण ये जो दुख हमको अनुभव होता है उस दुख सबसे बड़ा दुख है। लेकिन साथ ही साथ भक्ति विनोद ठाकुर ने कहते कि ही रिजिन सील हु थिंक्स वैष्णवस डाय द आर्ट इज लिविंग आर्ट इज लिव स्टील इन साउंड वैष्णवस डाय टू लिव एंड लिविंग स्प्रेड होली नेम्स अराउंड। भक्ति विनोद ठाकुर का के कहना है कि जो ऐसे सोचता है कि वैष्णव का मृत्यु हो गया ये सोचना गलत है। वैष्णव की कभी मृत्यु नहीं होता है, ये वैष्णव मर कर भी अमर रहते हैं। जब तक उन्होंने इसी धरा पर रहते हैं, इन्होंने होली नेम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचार और प्रसार में लगे रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब नित्यलीला में प्रवेश कर जाते हैं तो राधा कृष्ण के अंतर्ग लीला में जाकर गोलोक वृंदावन में उनकी नित्य सेवा में फिर जोड़ जाते हैं। इसलिए वैष्णव के आविर्भाव तथा तिरोभाव दोनों ही महत्वपूर्ण है। भगवान के तो केवल आविर्भाव हम मनाते हैं, जन्माष्टमी भानु सिंह जब भगवान के आविर्भाव को मनाते हैं, लेकिन वैष्णवों के दोनों माना जाता है, इनके आविर्भाव भी और इनके तिरोभाव दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण है। इसमें हम उनके संग न प्राप्त न करने के कारण हमें दुख लगता है, लेकिन वो स्वयं नित्य लड़ाई में प्रवेश करके ही भगवान राधा कृष्ण की सेवा में नित्य सेवा में जोड़ जाते हैं। इसलिए हमारे लिए दोनों हर्ष और शोक दोनों व्यक्त करने का यह दिन है। लेकिन फिर भी जैसे महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर, ये कोई साधारण मनुष्य हम जैसे नहीं थे, ये भगवान का ही कृष्ण प्रेम के मूर्तिमंत अवतार थे। कौन? नरोत्तम दास ठाकुर। ये इन जिनके आविर्भाव की भविष्यवाणी स्वयं गौरांग महाप्रभु ने किए थे, ये नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव होंगे, इस भविष्यवाणी को स्वयं गौरांग महाप्रभु ने इस भविष्यवाणी कह के गए थे। आज भी साधुओं के समाज में वृंदावन में नवद्वीप में बा जगन्नाथपुरी में आज भी गौड़ीय वैष्णव के बीच में ये कहावट है, यदि आपको कृष्ण के चरण में प्रेम चाहिए, यदि राधा कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, आज भी जाओ बाजार में, कितने 10 रुपये की दो, पहले तो दो आना था, लेकिन अभी 10 रुपये में 2 किताब खरीद लो, एक प्रेम भक्ति चंद्रिका और दूसरा प्रार्थना। प्रार्थना और चंद्र प्रेम भक्ति चंद्र के दोनों किताब कौन लिखा? श्री नरोत्तम दास ठाकुर, ये दोनों भजन किताब लिखे हैं। यदि आप नियमित इस भजन को बार 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 गाते रहोगे, अपने आप आपकी मति राधा कृष्ण के चरणारविंद में स्थिर हो जाएगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जिनके आविर्भाव की भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु ने करके गए थे, जो चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी से वृंदावन पहले बार जो वृंदावन गस्त में आना निश्चित किया था, उन्होंने बंगाल होकर आए थे, बंगाल होकर माता गंगा के दर्शन करना और दूसरे माता सची को दर्शन करके ही सची के चरण कमल, फिर उन्होंने बंगाल के अंदर होकर कान्हा नरसला होकर ऐसे ही आने का प्लान किए थे। लेकिन इस समय तो उन्होंने केवल मुख्य उद्देश्य था रूप और सनातन को उद्धार करना। रामकली में रूप सनातन को उद्धार करने के बाद सनातन गोस्वामी ने कहे कि महाप्रभु आप वृंदावन गस्त में जा रहे हैं, लेकिन आपके पीछे कितने लोग हैं? लाखों लाखों पब्लिक आपके पीछे चल रहे हैं, ये वृंदावन गस्त का परिपाटी नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने थोड़ा सोचे उसके बारे में, तो पहले कान्हा नटशाला से फिर उन्होंने वापस गए, और इस समय वृंदावन नहीं गए थे, वापस जाए फिर दोबारा वृंदावन झारखंड होकर उन्होंने आए। लेकिन जब उन्होंने कन्हैया नाटशाला से फिर प्रत्यावर्तन जगन्नाथपुरी को प्रत्यावर्तन करने की निश्चित किया, एक दिन हठात महाप्रभु ने सुबह सुबह उठकर अपने नित्य कर्म समाप्त करके ही तुरंत भाव में बिहोल हो गए, दोनों हाथ उर्धु करते हुए जोर से पुकारने लगे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। ये नरोत्तम नरोत्तम किसको पुकार रहे हैं? सभी लोग ने सोचने लगे कि ये जगन्नाथ को पुकार रहे, क्योंकि अभी जगन्नाथपुरी वापस जाने वाले हैं, हैं भगवान जगन्नाथ पुरुषोत्तम के एक नाम भी नरोत्तम है, श्री नरोत्तम नरोत्तम कहकर पुकारने लगे जोर से। लोग पूछने लगे, प्रभु ये नरोत्तम किसके नाम है? आप ऐसे भावावेश में जो प्रकृतिस्थ हुए, प्रभु आप नरोत्तम नरोत्तम किसको पुकार रहे थे? तभी महाप्रभु ने कहे कि नित्यानंद प्रभु ने जो जिज्ञासा की है, तो उन्होंने कहे कि हे नित्यानंद, तुम तो सदा मतवाला रहते हो, हैं आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी हैं, कृपा अवलोकन करो आमी बड़ दुखी। आप तो सदा प्रेम कृष्ण प्रेम के आनंद में मत रहते हो, लेकिन स्वयं का गुण की महिमा स्वयं भी नहीं जानते हो। आप जब जगन्नाथ में संन्यास लेने के बाद मेरे साथ में जो चार व्यक्ति गए थे, इनमें से आप भी एक थे, और मेरे साथ में जो जा रहे थे हो, इसलिए जाने के रास्ते में आप जितनी रोए, कृष्ण प्रेम में जितनी रोए थे, जितनी कृष्ण प्रेम, ये सबको मैं गंठुली बांध कर रखा हूं, इसी को एक व्यक्ति को मैं देना चाहता हूं। उस व्यक्ति का नाम है नरोत्तम। तभी महाप्रभु ने कहने लगे, नीलाचल जाइते जत कांदिया छ तुमी सही प्रेमा दिने दिने बांधिया छी आमी से प्रेम राखिबो आमी पद्मावती निरे नरोत्तम नाम पात्र दिबो आमी तारे प्रेमे जन्म हबे तार आमा विद्यमाने एखन राखिबो एखन राखिया जाब पद्मावती स्थाने। महाप्रभु कहे कि हे नित्यानंद, तुम पुरी में बंजलाचल में जाने के रास्ते में जितनी कृष्ण प्रेम में रोए हुए थे, वो सारे कृष्ण प्रेम को मैं अकेले कर एक गंठुली बांध कर रखा हूं, लेकिन इस प्रेम की गंठुली को मैं पद्मावती नदी में छोड़कर रखकर उसी के दायित्व में रखकर जाऊंगा, और बाद में पद्मावती ने उसी कृष्ण प्रेम की गंठोली को किसको अर्पण करेगा? एक व्यक्ति को देगा, जिस व्यक्ति का नाम है नरोत्तम। और इसे कहकर महाप्रभु ने कहे कि निताय चलो चलते हैं, कहाँ? पद्मावती के किनारे चलते हैं, पद्मावती में स्नान करेंगे, कुतुबपुर है, कुतुबपुर तक जाएंगे, वहां पद्मावती में स्नान करके ही, और वहीं पर मुझे प्रेम की गंठोली रखना है पद्मावती के जल में। ऐसे कहकर महाप्रभु ने नित्यानंद को साथ में लेकर कहाँ पधारे, आस्ते आस्ते पद्मानदी में पधारे, पद्मानदी के किनारे। तो वहां पर पधार कर महाप्रभु ने स्वयं पद्मावती को उद्देश्य कर कहने लगे, स्वयं स्नान किए। स्नान करने के बाद उन्होंने पद्मावती को कहे, प्रभु कहे पद्मावती धर प्रेम लह नरोत्तम नामे पात्र प्रेम तारे देह नित्यानंद सह प्रेम राखिल तोया स्थाने जत्न करिहा तुमी राखी बेगोपने। महाप्रभु ने पद्मावती नदी को कहे कि हे पद्मावती, मैं प्रेम की गंठोली तुझे अर्पण करता हूँ, और तूने इसको बड़े सावधानी से सहकार इसको गुप्त भाव से रक्षा करते रहना, और एक व्यक्ति आएगा तुम्हारे पास, उसके नाम है नरोत्तम, वो उसी की पात्र है, और इसलिए तुम्हें प्रेम की गंठोली उसी को अर्पण कर देना। किसको? नरोत्तम को दे देना, ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के वही अधिकारी है। तो पद्मावती ने पूछी, प्रभु मेरे को कैसे पता लगेगा कौन नरोत्तम है? तो महाप्रभु ने कहे कि पहचानने के तुझे बाकी नहीं रहेगा, ऐसे ही कोई व्यक्ति आएगा जो तेरे जल को ही स्पर्श करते ही तुम अपने आप तरंगायित हो जाओगे, तुम्हारा जल में उफान आ जाएगा, तुम्हें शरीर में सिहरण हो जाएगी, अष्टसात के विकार में तुम ओतप्रोत हो जाओगे, तभी जानोगे कि यही व्यक्ति कौन है, नरोत्तम है, और उसी व्यक्ति को तुम मेरे कृष्ण प्रेम की गंठोली को अर्पण कर देना। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, जिनकी आविर्भाव होना और उन्होंने जो प्रेम कृष्ण प्रेम की मूर्ति मंत्र अवतार के रूप में अवतीर्ण होंगे इसकी भविष्यवाणी कौन करके गया? स्वयं गौरांग महाप्रभु इसके बारे में भविष्यवाणी करके गए थे। तो इसी प्रकार ये नरोत्तमदास ठाकुर, जैसे हम साधारण दृष्टि से जानते हैं कि इन्होंने पद्मा नदी के किनारे जो कि वहां पर उनके पिताजी के नाम था क्या, कृष्णानंद दत्त, जिन्होंने एक छोटे राजा जैसे थे गोपालपुर प्रगणा में, खेतुरी इनकी राजधानी था, खेतुरी ग्राम जो कि पद्मा नदी के किनारे, तो प्रेम तुली जहां पर उन्होंने मंदिरों को छह विग्रहों को प्रतिष्ठित किए थे, वहां से लगभग आधा कोस दूर में एक माइल दूरी पर खेतुरी ग्राम है। इस खेतुरी ग्राम में एक कृष्णानंद दत्त और उनकी पत्नी नारायणी देवी रहते थे, उनकी और एक छोटे भाई और भी भाई थे, लेकिन उसी नारायणी देवी की गर्भ में इनकी जन्म हुआ। किनकी? नरोत्तम दास ठाकुर की जन्म हुआ था लगभग 1635 संवत्सर में इनकी आविर्भाव हुआ था। लेकिन जन्म से ही नरोत्तम दास ठाकुर देखने में बड़े सुंदर थे, राजकुमार हैं, लेकिन थोड़े से श्याम, थोड़ा सा सांवले वर्ण के थे, पूरे गोरे नहीं थे जन्म से, लेकिन देखने में इनके शरीर की अंग भंगी देखने में बड़े सुंदर थे। बचपन से ही ज्योतिष जब उनकी जातक गणना करने के लिए आया तो उन्होंने देखा कि इनके शरीर में 32 लक्षण है, कि महापुरुष के 32 लक्षण इनके शरीर में था, इनके शरीर में, नरोत्तम दास ठाकुर के शरीर में। इनके ज्योतिष ने कहा कि ये व्यक्ति कोई साधारण नहीं है, ये तो भगवान कहीं है पार्षद ऐसा ही बात, किसी महान वैष्णव महाभागवत वैष्णव बनेगा, ऐसा ही भविष्यवाणी बचपन से ही ज्योतिष इनके बारे में कहा था। किनके बारे में? नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में। माता पिता घर में एक ही मात्र पुत्र था, उसको बड़े हरे कृष्ण बड़े प्रेम करते थे, बचपन में इनको क्या बुलाते थे, नूरू नूरू है, नरोत्तम तो पूरा नाम था लेकिन इन क्या बोला ऐसे ही निक नेम कहते ना, नूरू नूरू कहकर इनको बुलाते थे। और सभी के पूरे बड़े क्या हो रहे हैं, हरे कृष्ण क्या कर रहे हैं, पूरा परिवार में इन्होंने बड़े आदर के पात्र थे। यदि उनके दूसरे उनके चाचा के एक पुत्र थे, उनके नाम था संतोष, लेकिन फिर भी नूरू बा नरोत्तम दास ठाकुर के स्वभाव को देखकर उनके पड़ोसी उनके संबंधी सभी उनके प्रति विशेष रूप में आकर्षित थे। जब भी उनके अन्नप्राशन के समय क्या कर रहे हैं, जब उनके अन्नप्राशन के समय हुआ, उनके ऐसे खीर लेके दिए लेकिन खीर के मुख बंद करी रखे, चिल्लाने लगे, कितनी किसी भी हालत से उन खीर को मुख में नहीं डाल सका। इन्होंने बड़े आश्चर्यचकित होकर पिता माता के ज्योतिष भी वहां बैठा था, उसको पूछे बोले कि ये बालक बताया था जातक कर्म करके कि ये महान कृष्ण भक्त बनेगा, इसको कृष्ण प्रसाद दो खाएगा, ऐसा नहीं खाएगा। तो तुरंत ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास में भोग लगाकर खीर लाकर जब दिए, मुस्कुराते हुए पूरा बड़े आनंद से वो महाप्रसाद को आस्वादन किए। जब बच्चे को सामने कुछ फेंका कुछ खेलना दी जाती है, कौन सा किसमें की ज्यादा इंटरेस्ट है देखने के लिए, प्रभुपाद जी के जैसे जन्म के समय में कई प्रकार के रुपया और कई प्रकार के धन धान्य, कई प्रकार की वस्तु, खेलने की वस्तु और सब रखा गया, भागवत रखा गया। प्रभुपाद ने किसको लेके पकड़े थे? भागवत को। गौरमोहन देव समझ गए पुत्र मेरी भागवत का प्रचार करेगा। उसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर कि जब बचपन में ही उनके सामने माता पिता भी एक कैसे देखते थे कि किसमें इंटरेस्ट है, विशेष रूप में इन्होंने भागवत को और शिव विग्रहों को इन्होंने आलिंगन किया था। तो इस प्रकार इन्होंने भविष्य में जो महान कृष्ण भक्त बनेंगे इसके बारे में इन्होंने सूचना दे दिए थे। लेकिन बाल्य शिक्षा के बारे में उनकी पिताजी ने, उनके गांव में एक कृष्णदास नाम के एक महान कृष्ण भक्त रहते थे, उनके पास में भेजते थे। इन्होंने भौतिक विद्या में भी पारंगम थे, व्याकरण आदि पढ़ाते थे, लेकिन साथ साथ उन्होंने गौर निताय के भी महान भक्त थे। इसलिए उन्होंने साधारण शिक्षा देने के साथ साथ ग्यामर ग्रामर आदि सिखाने के साथ साथ उन्होंने इनको गौर निताय की बहुत अद्भुत लीलाओं को भी वर्णन करके सुनाते थे। नरोत्तम दास ठाकुर जब गौरांग महाप्रभु की लीलाओं को सुनते थे, गौरांगे रे मधुर लीला जार करनी प्रवेशिला हृदय निर्मल भेल, तो नरोत्तम दास ठाकुर गौरांग के बारे में जब श्रवण करते थे उनके शरीर रोमांचित पुलकित हो जाता था, अष्टसत के विकार से उत्प्रत होकर रो रो कर मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाते थे। बचपन से ही गौरांग के प्रति उनकी इतनी अद्भुत प्रेम को देखकर हैं लोग बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। लेकिन थोड़े से उम्र होने के बाद जब 10-12 साल की कम हो गए, इन्होंने सोचते थे कि मैं चले जाऊंगा, घर बार छोड़ के कहाँ जाऊंगा, वृंदावन चले जाऊंगा। लेकिन इनके माता पिता देखे कि ये तो रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे बनने वाला है, तो इसलिए वो भी उनके साथ में रख दिए, कुछ सिपाही रख दिए इनको गाइड करने के लिए, सब समय जगने के लिए, कोई भाग न जाइए घर से। लेकिन ऐसे ही एक बार हुआ कि बंगाल के जो नवाब, संपूर्ण बंग उड़ीसा के बिहार के नवाब थे हुसैन शाह, उसमें और कोई तो उन्होंने उनको सुने कि ये जो कृष्णानंद दत्त की के लड़का है, सभी लोग बोलते हैं कि सभी प्रकार की गुणवान है, सभी बहुत बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति है, देखने में सुंदर है, सब सुने। तो उन्होंने बोला था कि इसको फिर बुलाओ, फिर रूप सनातन की तरफ ये भी जैसे इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, मिनिस्टर की पद भी संभाल सकता है, ऐसे सोचकर एक बार उन्होंने बुलाए कृष्णानंद दत्त को, बोले कि तुम्हारे लड़का को हम दरबार में देखना चाहते, इसको भेजो। तो दो सिपाही देकर विशेष भेजा राज सम्राट ने, सिपाही को देखकर इसको लेके आना है। कहीं कहते कि नहीं, एक कई जगह में वर्णन है कि नरोत्तम ठाकुर स्वयं जाते थे और रास्ता में ये दोनों सिपाही को धमका कर ऐसे ही कुछ बहाना करके जंगल में भाग गए थे, जंगल के अंदर दौड़ते वृंदावन मार्ग में आए थे। लेकिन कई जगह कहते कि उनके पिताजी और ताऊ ने उनको भेजा नहीं, नरोत्तम को पहले बड़े स्नेह था, कहे कि हम दोनों ही चलते हैं, नरोत्तम को डायरेक्ट उसके पास भेजना ठीक नहीं है, दोनों जा रहे थे, अकेले जब रह गए नरोत्तम अपनी माँ के साथ, तो माँ को ऐसा ही कहकर मैं वृंदावन जा रहा हूँ, प्रणाम करके माँ के चरण स्पर्श करके वृंदावन के मार्ग पर भागे थे। कैसे भी हो नरोत्तम दास ठाकुर को सुजोग मिला है कृष्ण की इच्छा से कि वृंदावन भागने के, तो वृंदावन भागे हैं, तभी उन्होंने उन प्रसिद्ध गीता गाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर की, गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते यानि बड़े नीर, हरि हरि बोलिते यानि बड़े नीर, गौरंग बोलिते Oh, my God.
संसार बासना मोर मने तुच्छ हवे संसार बासना मोर मने तुच्छ हवे विषय छारिया कबे शुद्ध हवे मन विषय छारिया कबे हम हेरब श्री वृंदावन कबे घुमर घुनाथ पते घुमर घुमर घुनाथ पते प्रार्थना कर कबे हम बुझब से जुगल पिरती कबे हम गौरंग बोली दे हबे तिलक शरीर गौरंग बोली दे हरि हरि बोली दे नारी बहनिया हरि हरि
तो नरोत्तम दास ठाकुर ने हाँ सिपाही दोनों सिपाही को कैसे भी बहाना करके वो उल्टे सीधे डांट कर जंगल के अंदर भाग गए। लेकिन ये घटना कैसे हुआ, ऐसे सौभाग्य कैसे मिला, क्योंकि जब नरोत्तम दास ठाकुर ने 12 साल की उम्र में थे, एक दिन रात्रि में उन्होंने स्वप्न देखा। नित्यानंद प्रभु स्वयं स्वप्न में आए, कहे कि नरोत्तम तुम्हारे लिए गौरांग महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम के गंठोली रखे कहाँ, पद्मावती में। तुम जाओ पद्मावती में स्नान करो और वो उस कृष्ण प्रेम के गंठोली को प्राप्त करो। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने एक दिन सुबह सुबह किसी को बिना बोले उनके घर से लगभग 1 माइल दूर पर पद्मावती में पहुंचे। और जो जैसे ही महाप्रभु ने कहे थे पद्मावती को, नरोत्तम दास ठाकुर उस पद्मावती को स्पर्श करते ही तुरंत पद्मावती नदी में उफान आ गया, जैसे समुद्र में उफान आता है। तो उस उफान में उसी लहरी में नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं पद्मावती के अंदर में प्रवेश कर गए, बह गए। जब उनको बाह्य ज्ञान संपूर्ण रूप में नष्ट हो गया, जब उनको बाह्य ज्ञान आया, देखे कि उन्होंने किनारे पर आ गए। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के शरीर अपूर्ववत श्यामल वर्ण के नहीं था। उन्होंने पूरे कृष्ण प्रेम को जब उन्होंने पद्मावती से प्राप्त किए, उनके शरीर गौरांग के समान है, गौरवर्ण की हो गया, जैसे तप्त कांचन गौरांग। इसलिए गौरांग महाप्रभु की वर्ण जैसे ऐसे ही वर्ण हो गया, किसकी, नरोत्तम की। और कृष्ण प्रेम की गंठोली को प्राप्त करके तो वो तो उन्नत होकर नृत्य करते रहेगा कई घंटा तक है, गौरांग पागल की तरफ नृत्य करने लगे। कौन, नरोत्तम दास ठाकुर, गौरंग गौरंग है, ओ हरे कृष्ण, कभी हरे कृष्ण गाते थे, कभी गौरंग निताय गाते थे, नृत्य करते थे। यहां पर घर में ढूंढते रहे लोग, नुरु कहां गया, नरोत्तम तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। सब ढूंढते ढूंढते इनके कई लोग चारों दिख से रोके, सोचे कि भाग गया ये है, कि सभी नौकर लोग ने चारों साइड ढूंढते ढूंढते कुछ लोग देखा है, आके देखा कि ये तो कोई नाच रहा है पद्मावती के किनारे, अद्भुत नृत्य कर रहा है, लेकिन दूर से तो ऐसे वर्ण देख रहा है, नौरतम तो गौरव वर्ण की, थोड़ा सा श्यामा वर्ण की थे, लेकिन ये तो पूरा गौरव वर्ण की है, ये कौन है? लेकिन फिर भी सन्निकट में जाकर जब सावधानी से देखे पहचाने, भाई ये तो वही है, नरोत्तम है, लेकिन इसके शरीर का परिवर्तन कैसा हो गया है, रंग का परिवर्तन हो गया है, क्योंकि अभी उन्होंने कृष्ण प्रेम को प्राप्त, माने महाप्रभु गौरांग महाप्रभु की कृपा से विशुद्ध कृष्ण प्रेम में वो तो प्रत थे। तो इसी प्रकार इसी घटना की बात में ही ये और घर में रहना संभव नहीं हुआ, दिन रात पागल की तरह भागना चाहते थे, कहाँ, वृंदावन, वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा और साधु संतों की संगमुधि प्राप्त होगा, कृष्ण कथा को ही दिन रात में चर्चा करते रहूंगा, श्रवण करने की मुझे मौका मिलेगा, ऐसे भावना में भागे। निताय चंद की कृपा हो गया, कवि हमें निताय चंदेर करुणा होइबे संसार वासना मरो मने उच्च हो गए। तो इस प्रकार गौरा नित्यानंद, जो नित्यानंद की कृपा मिला नरोत्तम को, तो नरोत्तम और घर में नहीं रह पाए, ऐसा ही हुआ था रघुनाथ दास को, पानीहाटी में उन्होंने प्राप्त किया, किसकी कृपा, नित्यानंद की कृपा, इसके बाद फिर भागे जगन्नाथपुरी। उसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर भागने लगे, लेकिन कहा खेतोरी ग्राम आए, बांग्लादेश खेतोरी ग्राम से वृंदावन तक उन्होंने कहा जाता कि लगभग 12 वीक में 14 दिन में पहुंच गए थे, कहाँ, विश्राम घाट। रास्ता में इनको शोध बोध नहीं था, जंगल में तो ऐसे ही मेन रास्ता में नहीं जाते थे, कोई पकड़ लेगा आके, जंगल में ही जंगल में भागते थे, राजकुमार थे, लेकिन पैर के इतने सुकोमल पैर के अंदर में कई प्रकार के क्या चूहते थे, कंटा चूहते थे, कई पत्थर चूहते थे, लेकिन फिर भी उसके पास ध्यान नहीं था, पैर में घाव हो गया था, भागते भागते 3 दिन 3 रात कुछ खाए नहीं, सीधे चल रहे, आकर मूर्छित होकर एक दिन गिर पड़े एक वृक्ष के नीचे। उस समय गौरांग महाप्रभु को सहन नहीं किया हुआ, इन्होंने स्वयं एक भिक्षु की वेश में सन्यासी में, तो उन्होंने एक लोटा दूध लेकर आए, किसके लिए, नरोत्तम के लिए, तमाल वृक्ष के नीचे मूर्छित होकर पड़े नरोत्तम। महाप्रभु ने कहे कि नरोत्तम उठो उठो, तुम्हारे लिए मैं ये दूध की लोटा लाया हूँ, दूध पी लो। लेकिन नरोत्तम तो पूरे क्लांत है, उनको कोई शोध बोध नहीं है, थोड़े समय महाप्रभु 2-3 बार जगाए, लेकिन नहीं जगह तो दूध की लोटा वहां रखकर अंतर्हित हो गए। लेकिन इसके बाद रूप और सनातन दोनों पदार्थ हैं, दोनों एक साथ आए और जो है बड़े प्रेम से इनको जगाए। नरोत्तम उठकर देखे रूप और सनातन, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके गिरे और कहे कि देखो नरोत्तम तुम कितनी भाग्यवान हो, जैसे माधवेंद्रपुरी के लिए गोपाल ने लेके आए थे दूध का लोटा, आज तो गौरांग स्वयं तुम्हारे लिए दूध की लोटा रख कर गए, तुम्हें दूध को पी लो, तुम्हारे शरीर का सभी प्रकार के क्लांति मिट जाएगा। तभी नरोत्तम दास ठाकुर कैसे उपदेश देते ही रूप सनातन अंतर्हित हो गए, प्रेम में बिहोड़ होकर रोते रोते नरोत्तम ने उस दूध को पिया, उनके शरीर के समस्त क्लांति मिट गया और उनके आंख से आनंद की अश्रु बहने लगा। जो नो ऊर्धभावु होते हुए नृत्य करते करते गौरांग 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 कहां जाऊं कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन है भाव में बिहोड़ होकर चले वृंदावन के मार्ग पर। कई घटनाएं, सारे डिटेल कहना समय नहीं, अभी समय बहुत हो गया। तो आस्ते आस्ते आकर ऐसे चलते चलते पहुंचे कहां, विश्राम घाट में, मथुरा के विश्राम घाट में आकर पहुंचकर स्नान कर रहे थे। लोगों में साधुओं के बीच में बातचीत होते सुने कि रूप और सनातन दोनों अंतरित हो गए, नित्य लड़ा में प्रवेश कर गए। इस बात को सुनकर तो इनके सिर में वज्रपात हुआ, इन्होंने बड़े बोले क्यों आया मैं इधर, अभी मैंने रास्ता में दोनों प्रभु मुझे दर्शन देकर आश्वासन दिए थे वृंदावन के आने के लिए, और मैं वृंदावन पहुंचते ही मथुरा पहुंचते ही अंतरित हो गए, नित्यला में प्रवेश कर गए। रोते रोते सोचते कि जमुना में ही मैं शरीर विसर्जन कर दूंगा, लेकिन ऐसे ही रोते रोते आते दो व्यक्ति वृंदावन से पधारे, जीव गोस्वामी ने इनको भेजे थे। पहले इनको स्वप्नादेश में ही रूप सनातन कहे थे कि ये आ रहा है, कौन, नरोत्तम आ रहा है, हैं तो इसको बड़े आदर के साथ अपने छोटे भाई के समान संभाल के रखना, ये महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र है, कृष्ण प्रेम की मूर्तिमंत अवतार है। इसलिए शिव गोस्वामी दूसरे दिन सुबह सुबह दो व्यक्ति को भेजा विश्राम घाट में, जाके देखो कोई आया होगा व्यक्ति, बांग्लादेश से आया होगा, खेतुरी ग्राम से, नरोत्तम नाम की कोई व्यक्ति को ढूंढ के लेके आओ। तो इसलिए पूछ रहे थे सबको, इधर कोई नरोत्तम है ना क्या? देख रहे कि एक व्यक्ति बहुत रो रहा है, आए चिल्ला रहा है जोर जोर से, गौरांग गौरांग हा गौरांग हा रूप हा सनातन है आहा स्वरूप सनातन है, जैसे विरह गीत में गा रहे हुए का हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट जुग से जीव हा प्रभु लोकनाथ। तुने गा रहे थे तो देखकर डाउट हुआ, बोला ऐसे गाने वाला कौन है? तो पूछे आपका नाम नरोत्तम है? बोला हाँ। इतने जानते ही उन्होंने दोनों उनको पकड़ लिए, कह कि चलिए हमको जीव को सामने भेजा आपको यहाँ से लेके जाने के लिए, कहा वृंदावन गोविंद देव की मंदिर में वो आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये बात को सुनकर तो नरोत्तम सोचे कि मैं तो प्राण विसर्जन करना चाहता था जमुना में, अभी मेहर महाप्रभु ने मुझे रुक दिया, और बाध्य होकर उनके साथ में वृंदावन में आए। वृंदावन गोविंद मंदिर में जीव गोस्वामी और श्रीनिवास आचार्य उस समय आ चुके थे वृंदावन में। श्रीनिवास आचार्य दोनों नरोत्तम दास ठाकुर को स्वागत किए। नरोत्तम दास ठाकुर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके जीव गोस्वामी के चरण में गिर पड़े। जीव गोस्वामी इनको उठाकर आलिंगन किए और इनको विशेष कृपा प्रदान किए। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के मन में ये भावना था, क्योंकि गौरांग महाप्रभु उनको स्वप्न में कहे थे कि तुम्हारे जो गुरुदेव है वो है कौन? लोकनाथ गोस्वामी, वो तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करते हैं, तुम इनसे जाकर दीक्षा प्राप्त करना। गौरांग महाप्रभु स्वप्न में भी लोकनाथ गोस्वामी को कहे थे, देखो लोकनाथ तुमको तुम्हारे पास में एक राजकुमार आएगा खेतुरी ग्राम से नरोत्तम, तुम इसको अपने शिष्य रूप में स्वीकार करें कर लेना। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी भी प्रतिज्ञा किए थे कि मैं जीवन काल में किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा, उत्कट वैरागी भजनानंद संत थे, ये सबसे पहले ब्रज में पधारे थे, छह गोस्वामी के पहले, रूप सनातन बंदे रूप सनातन रघुजी गो जीव गोपाल, ये छह गोस्वामी आने के पहले ब्रज में और दो गोस्वामी पधारे थे, लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। ये लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के सहपाठी थे, एक साथ में पढ़ाई करते थे, समसामयिक थे, महाप्रभु ने इनको पहले वृंदावन भेजे थे। लेकिन इन्होंने इतनी वैरागी थे कि कभी अपने नाम का प्रचार कभी नहीं चाहते थे, माँ पूजा मान प्रतिष्ठा से परे थे। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब इनसे कुछ डाटा लेने गए थे कि कुछ चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ बोलने के लिए चैतन्य चरिता में जब उन्होंने लिखते थे, लोकनाथ गोस्वामी कहे कि मैं गौरांग के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन एक शर्त पर, तुम मेरे नाम तुम्हारे किताब में कहीं भी उल्लेख नहीं करना है। बड़े बैरागी रहते संत हैं, कई जगह पर भ्रमण करते करते भजन करते, लेकिन विशेष रूप में उमराहा गांव में किशोरी कुंड के किनारे रहकर भजन करते थे। हाँ, कुछ दिन खेदुरी वन में भी उनकी समाधि है, खेदुरी वन तो मूल समाधि उधर है, खेदुरी वन में ये पुष्प समाधि है जो वृंदावन में आप देखोगे गोकुलानंद मंदिर में लोकनाथ गोस्वामी की समाधि है, ये पुष्प समाधि है, मूल समाधि इनकी खेदुरवन में है। लेकिन जीव गोस्वामी ने समझ लिए कि ये नरोत्तम चाहता है, मैंने लोकनाथ गोस्वामी को मिलने के लिए है चाहता है, तो इसलिए स्वयं इनको साथ में लेकर गए। जीव गोस्वामी लेकर गए लोकनाथ गोस्वामी में चरण में स्वयं प्रणाम किए, इनको भी प्रणाम कराए, क्योंकि हे प्रभु लोकनाथ आपसे दीक्षा प्राप्त करने के लिए आपके शिष्य बनने के लिए एक राजकुमार पधारा है, महाप्रभु प्रेरणा से वो आपके चरण में आया है। लोकनाथ गोस्वामी तो पहले से सोचते थे ये मेरा प्रतिज्ञा क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु ने मुझे इसे स्वप्न में कह दिया ये नरोत्तम एक राजकुमार आएगा इसको शिष्य बनाना, लेकिन मेरा प्रतिज्ञा क्या होगा, मैंने भी प्रतिज्ञा लिया किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। नरोत्तम दास ठाकुर देखते ही बोले कि है जीव गोस्वामी कहे कि ये तुम्हारे गुरु जी हैं तुम इनसे, इतना सुनते लोकनाथ है आप ले जाओ आप इसको शिष्य बना लो, किसको बोले जीव गोस्वामी, मेरे पास क्यों क्यों लेके मेरे तो अब तुम ज्यादा क्वालिफाइड हो, तुमको बहुत पंडितानी है, शास्त्र जानते सब कुछ जानते, तुम ही शिष्य बना लो इसको, मेरे को नहीं चाहिए, जाओ इनके साथ में, जो लेके आए उसके साथ में जाओ। नर्स में दो दो शिष्य बनाने वाले है नहीं, बहुत कट वैरागी है, रोने लगे हैं, हाँ कहे कि नहीं चलो यहाँ से। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने कहे कि ठीक है, जीव गोस्वामी को कहे कि आप वृंदावन जाइए राधा दामोदर मंदिर में, लेकिन मैं जब तक इनके शिष्य नहीं बनूंगा मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। तो जहाँ लोकनाथ गोस्वामी कुटिया बना के रहते थे उसके थोड़े दूर में वो दूसरे कुटिया से आधा किलोमीटर दूर में वो एक झुपड़ी बनाकर वहां रहने लगे के लिए, क्योंकि कोई भी सेवा करने के लिए आते तो भागा दे भाग यहाँ से, कोई सेवा स्वीकार नहीं करते थे लोकनाथ गोस्वामी, स्वयं कार्य स्वयं सब कुछ कर लेते थे। ये देखिए कोई भी सेवा का मौका नहीं है, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर सोचने लगे कि एक सेवा तो अवश्य मैं कर पाऊंगा। ये जब देखे कि कहाँ जाते प्रत्येक दिन सुबह उठकर नित्य कर्म करने के लिए बा मलमूत्र त्यागने कहाँ जाते हैं ये पता लगा लिए, तो उस एरिया को प्रत्येक दिन जाकर झाड़ू लेकर सफाई करने लगे, स्थान पूरा सफाई करते थे, गोबर में लीप देते थे, फिर वहां जाकर पानी का मिट्टी के पात्र में पानी लेके रख देते थे शौच के लिए। लोकनाथ गोस्वामी सोचे कि कौन कर रहा है ऐसा, कोई ब्रजवासी लवाड़क करता होगा, लेकिन आस्ते आस्ते से प्रत्येक दिन ऐसे होने लगा, ऐसे ही दो तीन सप्ताह होने लगा था, तो बोले कि कौन करता है काम, इतने नीच कर्म कौन कौन करता है, प्रत्येक दिन जो वहां जाकर वो मलमूत्र त्याग कर आते, वो मलमूत्र को स्वयं इसको उठा के दूसरे कहीं फेंक के उस स्थान को पूरा गोबर में लीप कर पूरा साफ करके रखता था। एक दिन उन्होंने मलमूत्र निवटने के बाद दूसरे झाड़ी के नीचे झाड़ी का पीछे छुप गए लोकनाथ गोस्वामी, देखना चाहते थे कि कौन है, कौन आ रहा है काम करने। देखे कि दूसरे झाड़ी के पीछे ये जो मलमूत्र निपट कर चले गए, दूसरे झाड़ी के पीछे से कौन निकाला, नरोत्तम दास ठाकुर निकालकर स्वयं देख रहे सोहस्त में मलमूत्र को उठाकर रखे और उसको पूरे झाड़ू उभार करके सफाई करके गोबर लिप रहे थे, प्रेम से अश्रु उनके आंख से बह रहा था। ये देखकर लोकनाथ गोस्वामी पीछे से जाकर पकड़ लिए, तुझे कौन बोला ऐसे काम करने के लिए, डांटे उनको बहुत है, तुम कौन बोला ऐसे काम करने के लिए, इतने निष्कर्म तुम राजकुमार हो मैं सुना, ये क्या कर रहे हो, बहुत डांटे हैं। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने मूर्छित होकर उनके चरण में गिर पड़े, किन के चरण में, नरोत्तम दास ठाकुर के चरण में, सॉरी लोकनाथ गोस्वामी के चरण में। कवि थे, कवि जो है जो कुछ बोलते हैं वो किस रूप में उनके मुख से निकलता है, गीत के रूप में। चरण में गिर पड़े और तुरंत गा उनके मुख से पद्य निकालने लगा, हा हा प्रभु लोकनाथ राख पद द्वंदे कृपा दृष्टे चाह जदि हई आनंदे मनोवांछा सिद्धि तबे हौ पूर्ण तृष्णा हेथाय चैतन्य मिले से था राधा कृष्ण তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর মনরে মনর বাসনা পূর্ণ কর এইবার এতিন সংসারে মোর আর কেই নাহি কৃপা করি নিজ পদ তলে দেহ ঠাই রাধা কৃষ্ণ লীলা গুণ গাউ রাত্র দিনে নরতম বাঞ্ছা পূর্ণ নহে তুয়াবিনে। রোতে রোতে পকড় লিয়ে চরণ কো কিসকি, লোকনাথ কি চরণ, আর লোকনাথ গোস্বামী কি হৃদয় পিঘল গয়া। হ্যাঁ वैष्णव के हृदय तो ऐसे ही कोमल होता है, बाहर में वो ऐसे ही डांटते हैं कुछ बोलते, लेकिन अंदर में हृदय बड़े कोमल होता है। नरोत्तम को उठाए आलिंगन की, कहे कि ठीक है नरोत्तम तू मुझे खरीद लिया, ये भी महाप्रभु का आदेश है, तुझे मुझे शिष्य बनाना ही पड़ेगा, ठीक है तुम जाओ जमुना में स्नान करके आ जाओ। नरोत्तम स्नान करके आए, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर कहे कि आपकी हेला तीनों जगत में मेरा और कोई आश्रय नहीं है, তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার। হে প্রভু আপকে ইলা তো তিনো জগৎ মে মেরে কোই নহি হ্যায়, কৃপা করকে মুঝে आपके शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। ए तीन संसारे मोर आरके हो नहीं, कृपा करी निज पाद तले देह ठाई, आपके चरण कमल में आश्रय दीजिए। अलोकनाथ गोस्वामी फिर उन्हीं को एकमात्र शिष्य रूप में स्वीकार किया, जिस प्रकार गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज ने भी एक ही शिष्य स्वीकार किए थे, किसको हैं? इसलिए कहते क्या, एक चंद्र तमहंति न तो तारा कोटिश्वपि, करोड़ों तारा होने भी आकाश को आलोकित नहीं कर सकते, एक चंद्रमा यदि है पूरा आकाश को आलोकित करता है। इसी प्रकार गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज ने एक शिष्य बनाए हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने पूरे गौड़ीय मठ की स्थापना करके प्रचार कार्य को आगे बढ़ाया। इस पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी एक शिष्य बनाया, उन्होंने कई शिष्य बनाए, लेकिन इसमें से एक कई हजारों चार तारा के बीच में एक चंद्रमा भी समान, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपा। उसी प्रकार लोकनाथ गोस्वामी एक ही शिष्य बनाए, कौन? नरोत्तम दास ठाकुर, जिन्होंने इनकी कीर्ति को सारा जगत में फैलाया। तभी लोकनाथ गोस्वामी ने इनके पास में ही रहने की और उनकी सेवा के अधिकार दिए और इनको भजन करने का प्रणाली सिखाए, कैसे राधा कृष्ण की भजन करना। उनकी उनके तो विग्रह कौन थे, लोकनाथ गोस्वामी के विग्रह कौन? राधा विनोद। इसलिए राधा विनोद की सेवा में इनको भी लगाए, किसको? नरोत्तम दास ठाकुर। लेकिन गुरु जी से भजन भजन को सीखने के बाद, भजन प्रणाली को सीख के बड़े निष्ठा के साथ हैं, भाव तो ऐसा ही भाव भक्त ऑलरेडी प्रेम इनको महाप्रभु ने प्रदान कर चुके थे, लेकिन फिर भी गुरु के चरण में उन्होंने भक्ति कैसे किया जाए, स्वयं उन्होंने लेख कर बताया अपने भजन में, श्री गुरु चरण पद्म, जिसको हम दोनों डेली दोहराते हैं गाते हैं, इसको कौन लिखा? नरोत्तम दास ठाकुर ने ही लिखे। अपने जीवन में जैसे उन्होंने उतारते थे उसी को उन्होंने भजन में लिखा, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंदे मई सावधान मते है, गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करिया ऐक्य आर न करिय मने आशा। हम तो इसको तोहरा तोता की तरफ दोहराते हैं, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर को जीवन में उतारते थे, इसलिए इन्होंने बड़े भाव विहोड़ होकर श्री गुरु चरण पद्म को आश्रय करके उनके आदेश को सदा पालन करते थे। एक दिन हठात अकेले कुंज में बैठकर उन्होंने जैसे गुरु के आदेश से है, राधा ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानव से करीबे ध्यान करते थे, तो तुरंत ही हठात उनके सम्मुख में स्वयं राधारानी प्रकट हुई। राधारानी प्रकट होगी बड़े आशीर्वाद दी कि हे नरोत्तम, तुमको मैं एक विशेष सेवा प्रदान करता हूँ, तुम प्रत्येक दिन मेरे कुंज में मेरे श्याम सुंदर के लिए राबड़ी बनाने की सेवा तुझे देता हूँ। प्रत्येक दिन तो दूध को उगालते उगालते क्या बनाना, राबड़ी रेडी करके रखना। यदि वो सेवा चंपकलता सखी ने करती है, लेकिन तुम्हारा नाम भी चंपक मंजरी में रखता हूँ, तुम्हारा नाम आज से मैंने क्या रखा, चंपक मंजरी, तूने इसी सेवा करते रहना। ऐसे कहते हुए राधारानी मुस्कुराते हुए अंतर ध्यान हो गई। भागते भागते अपने गुरुजी के पास गए, रोते रोते चरण कमल में गिरकर सारे कहानी कहे। राधा रानी की विशेष कृपा हुई, ये बात को सुनकर लोकनाथ गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए हैं, उनको आलिंगन किए, तूने राधा ने प्रिया जी ने स्वयं कृपा की है और इसी सेवा तुम करते रहो। मान इसलिए मानस सेवा करते थे, मन में प्रत्येक दिन ध्यान में बैठकर श्यामा सुंदर के लिए क्या बनाते थे, दूध को उगालते थे, उगालकर राबड़ी बनाते थे। एक दिन उन्होंने ध्यान में बैठे बैठे देखे कि दूध में उफान आ गया और उनके शरीर में दूध गिर गया, इनके हाथ में हाथ जल गया। तू आंख खोले तो सबको सब हाथ जला हुआ है, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़े प्रतिष्ठान पूर्व ब्राह्मण की कथा है, हाथ जल गया था उसका भी स्वीट राइस देख रहा था गर्म है कि ठंडा है। नरोत्तम दास ठाकुर के हाथ जब जल गया तो लोकनाथ गोस्वामी और दूसरे वैष्णव ने देखे ये हाथ कैसे जल गया, तो लोकनाथ गोस्वामी ने सॉरी नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने भजन की रहस्य को बताया, तो कहे कि तुम अभी भजन में सिद्ध हो गए हो, तुझे अभी तो अपने नित्य परिक्रमे से राधारानी स्वीकार कर ली है, तुमने चंपक मंजरी तुम्हारे नाम आज से ये तुम्हारे सिद्ध स्वरूप है, राधारानी ने स्वयं आपको विशेष कृपा की। इसके बाद लोकनाथ महाराज लोकनाथ गोस्वामी ने कहे कि हे नरोत्तम, अभी तुम भजन में सिद्धि प्राप्त कर लिया, अभी मेरे पास कोई टाइम नहीं, तुम जाओ भागवत का पढ़ाई करो, किससे? जीव गोस्वामी के पास जाओ, भागवत का अच्छा से पढ़ाई करो, इसके बाद प्रचार में जाओ। श्री लड़तमोहन दास ठाकुर गुरु के आदेश से फिर जीव गोस्वामी के पास आए, वहाँ पर भागवत पढ़ाई कर रहे थे तीनों प्रभु रहकर, हैं नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु, तीनों प्रभु को पढ़ाते थे। कौन? जीव गोस्वामी भागवत पढ़ाते थे। तो लेकिन भागवत पढ़ के जो पंडित बन गए पूरे सिद्ध मने, तो फिर तीनों का विशेष गुण देखकर जीव गोस्वामी तीनों को तीनों प्रकार के नाम दिया। ये भजन कीर्तन गाने में अत्यंत पारंगम थे, इसलिए उनके नाम रखे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। इन्होंने आचार्य को उपाधि दिया श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद की, क्योंकि राधारानी के विशेष कृपा पात्र थे श्यामानंद प्रभु, इसलिए इनको श्यामा के आनंद में आनंदित होने के कारण उनके नाम रखे। उनके पहले नाम था दुखी कृष्णदास, लेकिन जीव गोस्वामी ने कहे कि आज से तुमको दुखी कौन कहेगा, तुम तो श्यामा के आनंद में आनंदित हो गए हो, इसलिए तुम्हारा नाम रहेगा श्यामानंद। लेकिन इनको है कि ठीक है पढ़ाई तो खट कंप्लीट हो गया, लेकिन प्रचार भी करना पड़ेगा, प्रचार के बिना विद्या का कोई लाभ नहीं है। बहुत कृपण होते हैं, विद्या जानते प्रचार नहीं करते। लेकिन जीव गोस्वामी कह रहे तीनों जाओ ट्रैवलिंग संगठन पार्टी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ। गोस्वामी लोग ने इतने सारे किताब लिखा है, अभी तक तो लोगों को पता नहीं है किताबों के बारे में, इसलिए तुम इनको लेके प्रचार करो, बंगाल में उड़ीसा में बिहार में जाओ वहाँ प्रचार करो। उस समय तो ऐसे ट्रैवलिंग बस नहीं था, इसलिए बैल का गाड़ी है, बैल का गाड़ी के अंदर लकड़ी का बक्स बनाकर उसके अंदर में सब गोस्वामी ग्रंथ को सुरक्षित रखे हैं, और बॉडीगार्ड के साथ उस लाठी पकड़ने वाले से बॉडीगार्ड भी थे साथ में, कोई चोर फोर कोई आएगा डकैत लूटने के लिए। तो इसलिए सबसे पहला संकीर्तन पार्टी है जो अभी माराथन आने वाला है दिसंबर, अभी इस साल तो बहुत जल्दी आ रहा है माराथन है, नवंबर में ही गीता जयंती आ रहा है, तो इसलिए माराथन शुरू होने वाला है। जो सबसे पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी कौन कौन निकाला? नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु। बैल का गाड़ी में किताब को सब गोस्वामी ग्रंथ को रखकर जीव गोस्वामी के आदेश में प्रचार में निकले। हम कहते कि अरे प्रचार करना है, जो नया भक्त हो वो तो बनते ना, जो स्कूल में आते हैं इसकन में नया भक्त बनते हैं उन्हीं को भेजो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन पहला बुक डिस्ट्रीब्यूटर जो है तीनों व्यक्ति गए थे, ये सो नया भक्त थे नहीं, भजन में सिद्धि प्राप्त करने के बाद ये सभी अपने स्वरूप को भी जानते थे, इनको साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन भी हो चुका था। ऐसे स्थिति में फिर भी इनको कहे कि प्रचार में जाओ, प्रचार के बिना भजन सफल नहीं होता है। तीनों प्रचार में निकले, लेकिन जाते जाते तो बिहार के बॉर्डर में पहुंचे, बिहार बंगाल के बॉर्डर में वन विष्णुपुर गांव था, वहाँ वीर हमीरे के नाम का राजा था, और राजा तो नाम था लेकिन राजा होते हुए लोगों को भी लूटता था, अपने प्रजाओं को अच्छा से रखता था, लेकिन जो बाहर के लोग उसके राज्य के अंदर जो जाते थे यदि उनके पास में धन रहता था उनको लूट लेता था। ज्योतिष रखा था, ज्योतिष गणना करी बताता था कि इनके पास धन है तो उसको लूटते थे। इसलिए वीर हमीर ने रात में इनकी किताब के बॉक्स को पूरे सिंध को बड़े कहानी है सारे कहना संभव नहीं लूट लिया था। लेकिन बाद में श्रीनिवास आचार्य संकीर्तन लीडर थे, उन्होंने कही कि नरोत्तम और श्यामानंद तुम लोग जाओ प्रचार में, मैं किताब को उद्धार करने तक ही रहूंगा, किताब लेके कौन क्या करेगा, कोई मिस्टेक में ले गया था उसको वापस करेगा। इसलिए श्रीनिवास आचार्य ने वर्ण विष्णुपुर में रहे और वीर हमीर को भागवत कथा सुनाने लगे तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वो बाद में उन्हीं के शिष्य बन गया और सारे किताब इनको फिर वापस कर दिया। तो इसी प्रकार जो नरोत्तम दास ठाकुर श्यामानंद तो आके पहुंचे हैं, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर आए थे बस एक लेंगुटी है कौपिन और कंथासित है, कौपिन कंथा एक छिंडा कंथा कांत में कंबल और कई कौपिन पहनकर बस देख डंडा पकड़े थे बस। इस रूप में देखकर खेतुरी ग्राम में जब आ गए उनकी माता पिता तो जोर जोर से रोने लगे हैं, ये राजपुत्र थे त्यक्त्वा तूर्ण शेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत, इनको बैरागी कहते हैं जो राजा के समान संपत्ति को छोड़कर आकर कौपिन कंथा आश्रय करके वृंदावन के वृक्ष के नीचे रहने वाले तो इनको देखकर माता पिता तो रोने लगे, कहे घर में आओ, लेकिन ये घर में प्रवेश नहीं करते थे। भक्त रत्न में कहा जाता है कि आकुमार ब्रह्मचारी सर्वतीर्थदर्शी। तो नरोत्तम दास ठाकुर फिर माता पिता को अपने दूसरे मित्र भी था श्यामानंद, वो भी ऐसे ही था, तो श्यामानंद बाद में उनको वापस आए उड़ीसा, लेकिन उन्होंने रहकर माता पिता की उन्होंने विनय करके उनके निर्देशन में हाँ और विग्रहों को स्थापना किए। वहां से खेतुरी प्रेमतुली नाम के स्थान जो है खेतुरी ग्राम से कुछ ही दूरी पर इन्होंने 66 के विग्रह स्थापना किए थे। गौरांग वल्लभी कांत श्री कृष्ण ब्रज मोहन राधा रमण हे राधे राधा कांत नमस्तुते। 6 विग्रह 6 के विग्रह है। गौरांग महाप्रभु जिसको उन्होंने किसी धनाढ्य व्यक्ति के धान के अंबार के अंदर है लकड़ी का बॉक्स बनाते थे गांव में धान रखते उसी के अंदर में प्राप्त किए थे। उसका अंदर एक विशाल विषधर सर्प रहता था, कोई भय से उसके अंदर नहीं जाते थे, लेकिन एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर गए और उसी के अंदर घुसना चाहते थे धान के घर के अंदर। मना करने पर भी वो घुस के गए। नरोत्तम दास ठाकुर दरजा खुलते ही विषधर सर्प जो था जिसके सिर में मणि था चमक रहा था वो अपने नरोत्तम दास ठाकुर के चरण में प्रणाम करके तुरंत बाहर निकल गया। नरोत्तम दास ठाकुर उसके अंदर गए और तीनों विग्रह को उद्धार किए, गौरांग महाप्रभु विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया तीनों विग्रह को उसके अंदर से निकाल के लाए। इसको देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। इसके अलावा उन्होंने वल्लभीकांत राधा वल्लभीकांत राधा कृष्ण राधा ब्रजमोहन जो कि वृंदावन में है सुबह चैतन्य नित्यानंद दीनबंधु प्रभु अनाउंस कर रहे थे ज्ञान गुदड़ी में। वो नरोत्तम दास ठाकुर के 6 के विग्रह में से जो राजा राधा ब्रजमोहन ये ज्ञान गुदड़ी में आज भी विराजमान है। राधा रमण और राधा राधाकांत इस प्रकार ये विग्रहों को स्थापना की। स्थापना करके ही प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने लगे। जो प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने लगे ये तो कायस्थ परिवार में जन्म लिए थे लेकिन ब्राह्मणों लोगों को भी दीक्षा देने लगे हैं। ब्राह्मणों के भी गुरु बनने लगे कौन नरोत्तम दास ठाकुर कई ब्राह्मण को दीक्षा देने लगे। एक विशेष करके एक शिवानंद की ने एक ब्राह्मण था जो कि शिवानंद की पुत्र था वो ब्राह्मण था लेकिन उसके पुत्र था पुत्र वो भेजा था कि जाकर थोड़ा देवी का पूजा पंच यानी देवी पूजा के लिए एकाठी करके लाओ क्या कुछ भेड़ बकरी से वो लेके आओ भैंस सो बलि दिया जाएगा माँ के पास। लेकिन जो उसके बेटा जो रामकृष्ण था वो गया था शिवानंद के पुत्र था रामकृष्ण तो उन्होंने लेके सब वो लेके आ रहा था भेड़ बकरी भैंस सब लेकर माँ के पास बलि देने के लिए। लेकिन उसी समय नरोत्तम दास ठाकुर और गंगा नारायण चक्रवर्ती जाते थे गंगा में स्नान करने तो उसको देखे कि इतनी सारे भेड़ बकरी क्या करेगी तू क्या तो वो बताया कि पिताजी के आदेश में लेके जा रहा हूँ इनको सब बलि चढ़ाना माँ के पास। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने उसको रुके और 2 मिनट इसको प्रीचिंग किए जीवन का लक्ष्य क्या है और क्या लेकिन उनकी वाणी का शुद्धता था इसलिए प्रचार के व्यास में प्यूरिटी इज द फोर्स प्रभुपाद कहते प्यूरिटी शुद्धता होने से हम प्रचार कर सकते हैं। तो उसके प्रचार सुनकर नरोत्तम दास ठाकुर की बात सुनकर वो उसका मति बदल गया। इन्होंने सारे भेड़ बकरी के सब छोड़ दिया छोड़ के नरोत्तम दास ठाकुर के चरण में गिरा और उनके शिष्य बन गया। स्नान करके नरोत्तम दास ठाकुर गंगा में स्नान कर उसको मंत्र दीक्षा दे दी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भेड़ बकरी सब भैंस छोड़कर तिलक लगा के वैष्णव तिलक पहुंच गया घर में। बाप तो महाशक्त था बोला कि ये क्या है माँ के लिए बलि देने के लिए तुझे भेजा था भेड़ बकरी सब कहाँ गए भैंस। बोला कि मैं जो आ रहा था रास्ता में मुझे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय मिले इन्होंने मुझे प्रचार किया तो मैं भक्त बन गया वैष्णव बन गया मैं और ये बलि फली कुछ नहीं जानता। तो उसके बाप ने बहुत डांटा इसको घर से निकाल दिया भाग यहाँ से माँ को अवमानना करके ब्राह्मण होकर कायस्थ के घर से कायस्थ के हाथ से दिखा लिया चल यहाँ से। लेकिन ऐसे ही कई क्षत्रियों को ब्राह्मण को नरोत्तम दास ठाकुर अपने शिष्य बनाते गए। इससे बड़े डिस्टर्ब होकर एक बार वहां के राजा जो थे नरसिंह देव और एक दिग्विजयी पंडित था रूपनारायण दोनों प्लान किए कि इसको जाकर शास्त्र युक्ति में परास्त करके इसको बंद कराना पड़ेगा। ये कायस्थ होकर सूत्र होकर ब्राह्मण को शिष्य बनाता है ऐसे प्लान करके जब आ रहे थे उस समय नरोत्तम दास ठाकुर वृद्धावस्था में थे। इनके दो एक शिष्य थे उनकी गंगा नारायण चक्रवर्ती और एक शिष्य और थे रामचंद्र कविराज जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के महान मित्र थे। कई भजन में नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास। तो इसलिए रामचंद्र कविराज और रूप नारायण दोनों गांव के एंटर का आने के रास्ता में, वहां दोनों साइड में एक पान की दुकान, दूसरा मटका की दुकान खोल के बैठे। जानते कि स्मार्ट ब्राह्मण है ये, जब आएंगे इनको चाहिए, किसके हाथ में नहीं खाएंगे, कुकिंग करके नया बर्तन में खाएंगे, और खाने के बाद इनको क्या चाहिए, क्या कर रहे हैं, जान बुझकर टक टक कर रहे हैं। तो पान और मटका दुकान खोल के बैठे। आज जो भी रूप नारायण और राजा ने आए, उनके साथ में कई चेला से शिष्य लोग ने आए सब साथ में। आ शिष्य लोग ने आकर जब पूछिए, पान दुकान में गए, मटका खरीदने गए, तभी ये लोग ने देखे कि जो सेल करने वाले वो सब कैसे बात कर रहे हैं, संस्कृत में बोल रहे हैं। बोले अरे ये बोलनी वाला भी, ये जो दुकान पान बेचने वाला, हाँ मटका बेचने वाला, ये संस्कृत में बात कर रहे हैं। संस्कृत में बात करते करते दोनों में थोड़ा सा फिलोसफी भी चर्चा हो गया। तो स्मार्त ब्राह्मण थे तो इनको परास्त कर दिए, लोग दोनों परास्त हो गए, वो शिष्य लोग परास्त हो गए दोनों से। तो पान क्या खरीदेंगे ना, मटका खरीदेंगे, भागवा के अपने गुरु जी के पास गए। बड़ा लंबा कहानी में बनने के, बार बार यहाँ प्रसाद भी आ गए ऑलरेडी। तो इसलिए बाद में रूप नारायण जो दिग्विजय पंडित और राजा नरसिंह दोनों आए साथ में, आंख भी देखते कि ये जो पान बेचने वाला और मटका बेचने वाला, इनको जुक्ति में परास्त कर दिए। बोले कि अरे तुम लोग कहाँ से सीखे ऐसे जुक्ति ना, हमारे परम गुरु, हमारे आराध्य गुरुदेव हैं श्री श्रीमद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय से हम तो उनकी अत्यंत निकृष्ट शिष्य है। तो इस बात को सुनकर उन्होंने कहे कि अरे ये इनके बड़े निकृष्ट शिष्य, इनके पास में इतनी बुद्धि, इतनी सारे ज्ञान है, और हम नरोत्तम दास ठाकुर के पास क्या जाएंगे, यहीं से भागते, नहीं तो और अपमान होगा, तो वहीं से भाग गए। लेकिन ये दोनों जो वापस गए, उसी दिन रात को देवी ने स्वयं सपने में आए हैं, स्वयं दुर्गा जी ने सपने में आए, कहे कि अरे मूर्खो, तुमने महान वैष्णव अपराध किया है, तुमने नरोत्तम दास ठाकुर के पास गया था जो कि नित्य सिद्ध कृष्ण के भक्त है, तुम उनके पास जाकर मेरे प्रभु की भक्त के साथ तुम्हारे अपमानित करने तुम गए थे, इसलिए मैं तुमको आदेश देता हूं, तुम जाकर उनके चरण में गिरकर अपराध क्षमा मांगो और उनसे दीक्षा प्राप्त करो, नहीं तो देखो मेरे खड़गों को, तुम्हारे सौभाग्य में निपात कर दूंगा। उग्र मूर्ति में देवी को देखकर दोनों भाई दूसरे दिन भागवा के गए। नरोत्तम दास ठाकुर अपने पूजा करके ही बैठे थे, उनको बड़े दैन्यता से जाकर प्रणाम किए और अपने अपराध क्षमा मांगे, और दोनों को भी फिर नरोत्तम दास ठाकुर अपने शिष्य बनाया। इस प्रकार कई कहानी है नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में, लेकिन अंतिम लीला आज उनके तिरोभाव है। इन्होंने अपने शिष्य जो कि गंगा नारायण चक्रवर्ती की गांव में गंभीला में हैं नित्य लीला में प्रवेश किए थे। गांव में गए, सब तबीयत खराब हो गया था, भूखा हुआ था, हठात पूरे शरीर त्याग दिए, ऐसा लग रहा कि वो शरीर देहांत हो गया, इनको श्मशान में लेकर गए हैं शरीर को। लेकिन गंगा नारायण चक्रवर्ती बहुत जोर से रोने लगे, क्योंकि सारे स्मार्त ब्राह्मण कहते थे कि देखो देखो गुरु को देखो, ब्राह्मण को शिष्य बना रहा था, अभी जाने का शरीर त्यागने का टाइम, कृष्ण नाम भी मुख में नहीं आया है, ब्राह्मण को शिष्य बनाने का फल मिला, सब नरोत्तम दास ठाकुर की निंदा करते थे। इस बात को जब गंगा नारायण चक्रवर्ती बार बार कहे कि हे प्रभु, ये मूर्खों को तो उद्धार करके जाओ, मैं आपकी निंदा सहन नहीं कर सकता हूं, कहने पर जो सोए हुए थे सब क्या है सजे तुरंत उठ के बैठ गए। कौन उठ के बैठ गई, इनको उठ के बैठ के देखते ही ये सब स्मार्त भागा, भाग गए सब है। फिर नरोत्तम दास ठाकुर कुछ दिन रहे और फिर प्रचार कार्य को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन आज की ये तिथि कौन सा, तो ये माघ महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, इस तिथि में उन्होंने फिर नित्यालय में प्रवेश किया। अपने दोनों शिष्य ने, ये दोनों को कहते थे जो गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामकृष्ण, दोनों कहते थे कि मेरे दोनों बैठे गंगा में हैं, पद्मावती गंगा में आए थे, इसलिए गंगा में ही अंतर्हित हुए, बैठे थे, कहे कि मेरे शरीर में पानी डालते रहो, मैं स्नान करता हूँ। दोनों शिष्य बोले बंद नहीं करना, दोनों शिष्य जब दोनों साइड में रहकर गंगा की जल उनके शरीर में देते थे, हैं दुग्ध समान दूध के समान ऐसे फेन फेन होकर इनके शरीर संपूर्ण रूप में गंगा में ही मिल गया। इनके शरीर हमारे जैसे ऐसे हड्डी मांस अस्थि कमल ऐसे बना नहीं हुआ था, कृष्ण प्रेम की मूर्तिमंत अवतार थे, आए पद्मा नदी से ही इनको कृष्ण प्रेम के शरीर प्राप्त हुआ था और अभी पद्मा में वो अंतरित हो गए। इसलिए उनकी कोई शरीर का समाधि नहीं है, उनकी पुष्प समाधि है। जैसे गोकुलानंद मंदिर में आप जाओगे वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर के पुष्प समाधि है। इसलिए आज उनकी तिरोहाव तिथि है। इन्होंने ऐसे ही आचार्य है जिन्होंने सबसे पहला गौरव पूर्णिमा फेस्टिवल को मनाया था। गौरांग महाप्रभु अंतरित होने के बाद इनकी गौरव पूर्णिमा गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव की महोत्सव कोई मनाता नहीं था, लेकिन पहले बार इन्होंने खेतुरी ग्राम में ये महोत्सव मनाया। कौन? नरोत्तम दास ठाकुर ने। जाह्नवा माता आदि हजार हजार लोग जाकर उस फेस्टिवल में एकत्रित हुए। बंगाल उड़ीसा बिहार जाकर बांग्लादेश में सभी खेतुरी ग्राम में एकत्रित हुए। छह विग्रहों की प्रतिष्ठा की गई। जो महासंकीर्तन हो रहा था लाखों लोग एक साथ में नाचते थे गाते थे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महासंकीर्तन हो रहा था, स्वयं नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन लीडिंग करते थे, कीर्तन के नेतृत्व करते थे। उसी कीर्तन की सभा में सभी लोग देखे पंचतत्व साक्षात रूप में आविर्भाव हो गए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद प्रकट होकर नृत्य करने लागे। इसलिए कहते कि अद्यावधि नित्य लीला करे गौरा राय कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। इसी प्रकार यदि नरोत्तम दास ठाकुर की तरफ कोई शुद्ध कीर्तनिया होगा फिर कीर्तन चलेगा, महासंकीर्तन चलेगा, पंचतत्व अवश्य आविर्भाव होकर नृत्य करते हैं। ये अंतरहित हो गए हैं, कभी शरीर नहीं त्यागे, अभी भी चल रहा नित्य संकीर्तन की महान जो नित्य संकीर्तन अभी भी चल रहा है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभा महा महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। माफ करने का समय नहीं है, समय के आधार पर बहुत संक्षेप में कहा गया है, नहीं तो विस्तार करना बहुत लंबा होता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभा महा महोत्सव की। हरे कृष्ण।